الله 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 الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت اہل سر. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے, کہہ دیجئے کہ بھلا تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے؟ تم اس کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے. اللہ پاک اس کی سمجھ دے, اس کو سمجھنا آسان فرمائے. تو جہاں انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم دے رہا ہے, وہاں بے شمار علوم جو ہیں اسے بندگی کی معنوں سے آشنائی کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب آپ نے بتا دیں کہ بھلا تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس وقت کے لوگوں کو خشکی اور تری, یعنی زمین اور سمندر, ان دونوں حصوں میں جہاں جہاں مسائل پیدا ہوتے تھے, تکالیف آتی تھیں, تو وہاں اللہ جل شانہ مدد فرماتے ہیں. تو اگر اللہ کریم مدد نہ فرمائیں تو پھر کون ہے جو ان حالات میں مدد کر سکے؟ ایک پہلو جو یہاں سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حیات میں تکالیف, اس دنیا کے یہ خشکی کا حصہ ہے یا سمندر ہے, دنیا میں بے شمار انداز سے اگر آپ غور فرمائیں موسمی حالات ہیں, موسم کے تغیر و تبدل سے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. زمین کے اندر کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس سے زلزلے آ جاتے ہیں. اسی طرح سمندر ہے, سمندر کا جو طوفان ہے وہ اس کی اپنی خوفناکی ہے. سمندر کا زلزلہ جو ہے وہ اس حد تک پانی کو ہلاتا ہے کہ پانی خشکی پر چڑھ آتا ہے. تو جو نقطہ یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حیات میں تکالیف کا ہونا ایک قدرتی عمل ہے. یہاں وہ اعتراض جو زندگی کی تکالیف پر انسان اٹھا رہا ہوتا ہے اس کا بھی جواب میسر آتا ہے کہ حیات کے ساتھ یہ مسائل جڑے ہیں اور ہر صورت میں کیا سیرت اختیار کی گئی, کیا معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. یعنی تکلیف میں بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور اللہ کریم سے مدد جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے. تکلیف میں ہی اعتراض بھی آ سکتا ہے اور غیر اللہ سے امداد کی توقعات بھی وابستہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر کامیابی ہے, خوشی ہے, تو اس میں بھی اللہ کریم کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور مزید اس سے دعا کی جا سکتی ہے, مزید خوشیوں کی دعا کی جا سکتی ہے. جو خوشی عطا ہوئی وہ نصیب ہو دعا کی جا سکتی ہے. یا پھر اس کا دوسرا پہلو یا جو غلط حصہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کے لیے اپنی ذات کا جواز رکھا جائے کہ میری استعداد ہے, میری عقل ہے, میری طاقت ہے, میری پہنچ ہے, میرے تعلقات ہیں. और मजीद दूरी का सबब होता चला जाए। तो यहाँ से जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया की हयात जो है ये एक दारुल इब्तिला है, और यहाँ अगर तकालीफ आती हैं या हादसात रूनमा होते हैं तो महज इत्तफाकात नहीं है, एक मरबूत निज़ाम है। उस मरबूत निज़ाम में ये तकालीफ आना जिंदा होने की अलामात से अलामात हैं। अगर कोई फौत हो जाए उसे बर्फ़ पर लिटा दो, उसे धूप में लिटा दो, उसकी चारपाई जनाजे के लिए उठाओ, नाम कोई नहीं ले रहा। बर्फ़ पर वो शिकायत नहीं कर रहा कि मेरा वजूद सर्दी से जल रहा है, धूप पर पड़ा वजूद शिकायत नहीं कर रहा कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि वही इंसान जब हयात था तो ये तकालीफ महसूस भी करता था, बयान भी करता था। आज उसकी सूरत ऐसी हो गई कि उसकी चारपाई उठाते हुए रिश्ते जो हैं उनका नाम बाकी नहीं रहा, मैयत कही जा रही है। तो अगर हयात है तो फिर सर्दी भी महसूस होगी, गर्मी भी महसूस होगी, और ये ऐसा सात अलामात हैं हयात की। तो ये जब फरमाया जा रहा है कि ऐ मेरे हबीब इन्हें बता दें, कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, कि ये जो खुश्की और तरी में तकालीफ हैं, यहाँ हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हिस्से में फरमाया अंधेरों में कौन निजात देता है, क्योंकि इससे मुराद यही तकालीफ हैं जो आफात आती हैं। तदूनहु तदर्रुअन व खुफियात, फिर दूसरे हिस्से में जो इरशाद फरमाया तुम उसको आजी से और चुपके पुकारते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में मक्कातुल मुकर्रमा जो है ये तिजारती मरकज की हैसियत रखता था, और खित्ते अरब के लोग तिजारती काफले बनाते थे और दुनिया के मालूम हिस्सों तक ये तिजारती काफलों का जाना या सामान का ख़रीदना या सामान का मंगवाना तारीखी हिस्सों में बहुत हद तक ये से साबित होते हैं। तो सफ़र भी करते थे, और बुनियादी तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो वो जो मुखालफत करते थे, अल्लाह करीम की ज़ात का इनकार करते थे, शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे, तो वो तो तकब्बर और अनात थी। लेकिन जब मुसीबत आती थी, चाहे वो समुंदर के सफ़र पर थे या वो खुश्की पर कहीं सफ़र को जा रहे थे, तो किसी तरह की भी कोई बड़ी मुसीबत आ जाती तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरे हबीब इन्हें बता दें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू तो इनकार कर रहे हैं, अपने उस माशरे में जहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ तो इनकार को न सिर्फ इनकार तक बल्कि इनकार को तकवीत देने की हद तक जा रहे हैं कि जो इनकार करे उसे सहूलत है और जो इकरार करे उसको तकालीफ भी दी जाए, रोका भी जाए। तो जब मसायब आते थे, जब तकालीफ आती थी, तो उस वक़्त अल्लाह करीम को आजी से और खामोशी से खुफिया तदर के साथ पुकारते हो, यानी हकीकत में अल्लाह जल्ला शानुहू का मानना है, लेकिन उस मानने में अपनी ज़ात रखी गई है कि ऐसे मानू जैसे मैं चाहता हूँ। कुरान करीम की आयात करीमा में ये हिस्से भी बयान फरमाए गए हैं कि जब उसके उसकी ज़ात का नाम लिया जाता है तो तुम्हें तकालीफ होती हैं, तुम उससे खफा होते हो, लेकिन जब उसके साथ कोई शिर्क बयान करता है तुम खुशी खुशी उस बात को मानते हो। तो वो अनाद, वो तकब्बर जो सबब बन रहा है इस इनकार का, उस लम्हे वो भी नहीं होता, और उस हकीकत से जा आशना होते हैं कि कोई अल्लाह सबब बना दे इस तूफान से निजात। बेशक ज़मीन पर तकालीफ जो हैं उनकी सूरत भी और है, और तकलीफ तकलीफ होती है, भले सर दर्द ही हो, जिसे हो उसे मालूम होता है, लेकिन जब इसकी सूरत आप समंदर में देखते हैं ना जी, तो समंदर में वही जहाज या कश्ती जिस पर आप सवार हैं वो आपको पानी पर रखे। जब उसकी तबाही की सूरत आती है तो फिर गिर्दोपेश दूर दूर तक समंदर है, खुश्की कहीं नजर नहीं आ रही। तो ऐसे लगता होगा या ऐसे लगता है, अगर हम अपने तखयल में भी ख्याल करें, कि वो दूर दूर तक जैसे मौत के कदम हैं, जिस तरफ भी इस कश्ती के बगैर बंदा पानी बहाएगा मौत ही मौत है, वो गर्क हो जाएगा। फिर कितनी मखलूक है जो ज़मीन में इसमें पानी में बसती है, जिनकी खुराक ही गोश्त है। तो जाने वजूद का कौन सा हिस्सा किस जानदार के वजूद का हिस्सा बने, निवाला बने। तो वो एक खौफ की कैफियत जो है वो ऐसी सूरत दे देती है कि इज्ज़ भी है और वो खामोशी से और गिर्दोपेश से भूल गए। कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई मेरी सूरत देख रहा है, कोई मेरी सूरत नहीं देख रहा। तो अल्लाह जल्ला शानहु के हुजूर ऐसी गिड़गिड़ाहट से, ऐसी इज्ज़ से और ऐसा अंदाज जिससे ये महसूस है कि हम कलामी की सूरत है, अल्लाह करीम से आफियत मांगते हैं। तो फिर यहां जो दूसरा नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि पहला हिस्सा तो ये सर्दी गर्मी या दिन रात, सेहत बीमारी, ये अलामात हैं हयात की कि हम जिंदा हैं। फिर इसमें दूसरा हिस्सा कि हर सूरत में अगर कामयाबी है तो शुक्र अल्लाह का अदा किया जाए और अल्लाह की तरफ से ही इस बात को समझा जाए कि उसकी करम और अता के सबब ये कामयाबी नसीब है। अगर तकलीफ है या दुख है या कोई नाकामी है, उसमें वो अमूर जो खुद ज्यादती के हैं उन्हें देखा जाए और अल्लाह करीम से मदद मांगी जाए, अल्लाह करीम से आसानी मांगी जाए, अल्लाह करीम से सेहत मांगी जाए। हर दो सूरत में बंदे को मुतवज्जे इलल्लाह होना चाहिए। अब वो ज़रूरत अपनी मांग रहा है, जो नसीब है उसका शुक्र अदा कर रहा है। हर दो सूरत में फिर उसे एक ऐसा कुर्ब इलाही की सूरत जो है वो नसीब हो रही है कि मजीद अल्लाह जल्ला शानहु की बंदगी नसीब हो रही है। फिर यहाँ जो बयान फरमाया गया है, हालां ये सूरत उनकी बयान फरमाई जा रही है जो जाहिरी तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत में अल्लाह को पुकारते हैं और ऐसे पुकारते हैं कि इस आया करीमा से दुआ मांगने की जो रहनुमाई है वो भी नसीब हो रही कि जब अल्लाह करीम से मांगा जाए तो उसके अंदर इज्ज़ होना चाहिए, महसूस हो कि मखलूक खालिक के हजूर हाजिर है, खालिक से मांग रही है, मालिक से मांग रही है, उसके अंदर इज्ज़ हो, अपने न होने का एहसास हो, जो कुछ है वो अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ मंसूब हो। फिर वो खामोशी जिसे शायद गिर्दोपेश के लोग न सुन सके, लेकिन अल्लाह की ज़ात अलीम है, वो जानते हैं, वो कादरे मुतलिक हैं। जब अल्लाह जल्ला शानहु से हम कलामी की सूरत आजी में और वो चुपके का जो अंदाज है वह खुफिया, तो ये सूरत अल्लाह करीम को पसंद है। यहाँ इरशाद फरमाया जा रहा है वो जो इनकार कर रहे हैं कि जब मसाइल में आते हैं, मसाइब में आते हैं, तो इस अंदाज से अल्लाह को पुकारते हैं, और कौन है जो इस अंदाज में उनकी सुनता है और उन्हें निजात देता है। तो समझ आई कि तकालीफ में जो अल्लाह करीम के साथ हजूर दुआ करनी है या कभी भी को अल्लाह के हजूर दुआ करनी है, तो हम कलामी की सूरत भी नसीब हो गई और उस हम कलामी की जो सूरत है वो भी यहाँ से तालीम फरमाई जा रही है कि आजी भी हो और वो खामोशी जो अल्लाह और बंदे के माबैन हो। लाइन अनजान मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिन अश्शाकिरीन, फरमाया अगर हम को इस आफत से निजात दें। अब ये वो दुआ मांग रहे हैं, इज़ के साथ क्या मांग रहे हैं कि अगर हम को इस आफत से निजात दें, इस तकलीफ से निजात दें, लनकूनन्ना मिन अश्शाकिरीन, तो हम ज़रूर आपके शुक्रगुजार होंगे। अब यहाँ अगली बात कि वो बुनियादी तौर पर सौदा कर रहे हैं। अब सौदे की कैफियत अगर आप ताजर से पूछें या तिजारत के असूल देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ताजर दोनों हम पल्लों, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन तिजारत में हर दो फरीक के पास मलकियत ज़रूर होती है, जिसके फैसले का हक उसके पास होता है और जो मलकियत है वो उसकी ज़ात से मुंसलिक होती है। भला एक तरफ किसी के पास 100 में से 99 हिस्से उस शय के हों और दूसरा जो ताजर तिजारत के लिए सामने है उसके पास 100 में से एक हिस्सा हो, वो 99 वाला अगर 99 हिस्सों की मलकियत रखता है तो वो एक हिस्से वाला जो है उस एक हिस्से की मलकियत तो रखता है। तो मलकियत की सूरत में दोनों बराबर हैं। मलकियत का जो वजन है इन औजान में फर्क हो सकता है, लेकिन सूरत जो मलकियत की है वो दोनों के पास। अब जब इसी हिस्से को आप अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ मनसूब करेंगे तो अगर कोई सौदा कर रहा है तो वो खता खा रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो ज्यादती कर रहा है कि अगर मैं इस तकलीफ से निजात पाऊं तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा। अब शुक्रगुजार होना क्या है? ईमान, इबादत, मामला, तीनों हिस्सों में अल्लाह करीम का हुक्म मानना शुक्रगुजारी के मानों में बुनियादी हिस्सा रखता है। यानी इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करेगा। अब जिस हिस्से को मान रहा है वो भी अल्लाह का अता किया हुआ है, जिस शय से अल्लाह की मदद मांग रहा है उस शय की मलकियत भी रब्बुल आलमीन की है, और जो मदद होनी है ये भी अल्लाह जल्ला शानहू की कुदरत है। जो मांग रहा है उसका वजूद जाती नहीं है। तो यहां कोई सूरत जचती या जमती ही नहीं है कि यहां सौदे की बात की जाए। कितनी बार हम सुनते हैं अपनी महफिल में, अपनी गुफ्तगू में, सवालों जवाब में ये पहलू कि इतनी नमाज पाबंदी से भी पढ़ रहा हूँ, तस्बीहात भी करता हूँ, नवाफिल भी पढ़ता हूँ, मेरे घर से मुसीबत है कि जाती नहीं, घर का एक न एक फर्द जो है वो बीमार रहता है, कारोबार करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है, मैं हज भी कर आया हूँ, मुझे समझ नहीं ये मुसीबत मुझसे क्यों नहीं टल रही। अब यहाँ आप गौर करें कि ये हिस्से वो जो मुशरिक थे उनकी कैफियत बयान फरमाई जा रही, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू इनकार करते हैं और तकब्बर करते हैं, जिद और अनाद करते हैं। जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो फिर आजी करते हैं अल्लाह के हुज़ूर और उससे मदद मांगते हैं और क्या कहते हैं, या अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे दे, हम तेरे शुक्रगुजार बंदे हो जाए। अब एक सूरत यहां दुनिया में ये बयान फरमाई जा रही है, फिर एक सूरत जो आखरत की है रोजे माशर की वो भी बयान फरमाई गई है कि जो पेश आएगा। कितने ही हिस्से जो वहां के बयान फरमाए गए हैं वहां से भी ये नजर मिलता है कि वहां अल्लाह करीम के हजूर ये अर्ज करेंगे, बारेला अब हमने हकीकत देख ली है, एक बार हमें यहां से वापस भेज दे, हमें वापस भेज दे, हम फिर शुक्रगुजारी की कैफियत जो है उसको जिंदगी को इख्तियार करेंगे, हम तेरे मुखलस बंदे होंगे, हम तेरा हुक्म मानेंगे। अब यहां जहां मौका है यहां भी वो सौदा कर रहे, तो बुनियाद सौदे की नीयत है। मैंने अर्ज किया कि तिजारत में एक असूल जो है वो बड़ा वाज़े होता है कि दोनों फरीक जो हैं वो मलकियत रखते हैं ज़ाहरी हैसियत में, कुल्ली तौर पर तो हर चीज़ का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, लेकिन आर्जी मलकियत जो दुनिया की उसने अता की हुई है मखलूक को, उसमें दोनों की सूरत भले एक के पास बेशुमार हो और एक के पास कम हो तो वो तिजारत करते हैं। यहां जब अल्लाह जल्ला शानू के हजूर बात आ रही है तो यहां समझ नहीं आई कि ये कौन सी तिजारत के असूल है कि अपना तो है कुछ नहीं, जो कुछ है उसी का। तो फिर हर दो सूरत में शुक्राने की ही कैफियत है जो जवाब बनता है, जो हल बनता है और जो कामयाबी बनती है, جو سودے کا آلہ ہونا یا اس تجارت کا آلہ ہونے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہر دو صورت میں اللہ کا ہی شکر ادا ہو، ذات کو بیچ میں سے نکال دیا جائے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، سودا کرے اس آفت سے اگر اے بار الہ ہمیں تو نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو. اب ہیں کون جو انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے. ہم جب اس سودے پر آتے ہیں ہم کون ہیں؟ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد. اب فرد ہو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبحان ربی الاعلی سودے کے لیے کر رہا ہو تو کیا صورت ہوگی؟ ان رکوع و سجود کا محاصل کیا ہوگا؟ اسے اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے سامنے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے اس میں کوئی تشنگی نہیں ہے کہ ایک حصہ تو بڑا جامع ہے تو دوسرا حصہ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے، یعنی عقائد تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے مدلل ہیں، عبادات میں کوئی کمی بیشی ایسا نہیں. عبادات میں بہت خوبصورتی، بہت نکھار، اور دیکھنے والے کو بھی عبادت کے پہلو جو ہیں وہ خوبصورت لگتے ہیں. پھر عملی زندگی جہاں کہ شب و روز میں ہر سانس پوری کرنی ہے تو ایک ایک سانس کا لینا بتایا گیا ہے، ایک ایک نوالے کا کھانا اور اس نوالے کے حصول اور اس رزق تک کی رسائی، ایک ایک چیز کی رہنمائی فرمائی گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی کہے کہ کوئی تشنگی ہے. اب جب ہم اس پہلو کو دیکھیں گے تو غور کیجئے گا کوئی زندگی کا پہلو آپ کو تشنگا نہیں ملے گا. جب تشنگی یہاں نہیں ہے تو پھر جو ہمارے حالات ہیں اس کا کیا سبب ہے؟ بے عملی. ہم نے بڑے شوق سے یوم آزادی بھی بنایا اور اس یوم آزادی کو اظہار یکجہتی کشمیر کے طور پر بھی منایا. مجھ سے سوال کیا کسی محترم نے کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر تو ہماری بحث رہتی ہے یا اس کی تدبیر بہتری کی ہے، وہ کیا ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھیں، پوری دنیا میں امت کے حالات دیکھیں تو پوری دنیا میں امت جو ہے یہ کمزوری کی طرف ہے، انحطاط کی طرف ہے، زوال کی طرف ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا، محترم، کہ آپ کا جو سوال ہے اس سوال میں ہی جواب ہے. تو کہا کیسے؟ تو میں نے کہا عروج کے اسباب کیا تھے؟ آپ زوال کی بات کر رہے ہو تو عروج کے کیا سبب تھے، اور جو سبب عروج کے تھے کیا وہ سبب آج ہمارے پاس ہیں؟ ان کا نہ ہونا ہی ہماری زوال کا سبب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عملی زندگی میں ہم نافذ نہیں کریں گے تو پھر حالات ایسے ہوں گے، پھر ہم کمزور ہوں گے. ہماری نالائکی امور دنیا تک پہنچ چکی ہے تو آج ہم دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے. اس آزادی اور آزادی کے مفہوم کیا ہے، کس لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے بحث یہ کی تھی کہ الگ ملک نہ ہو، پورا ہندوستان مسلم رہ سکے، پھر وہ کون سے حالات تھے جن سے پاکستان معرض وجود میں آیا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لٹے پٹے خاندان جنہوں نے عزتیں تاتار کرائیں، اپنے گردنیں اڑائیں، نو مولود نیزوں پر لٹکائے گئے، ان کے رستے کے کیا حالات تھے، اور جب یہاں پہنچ چکے تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ہمیں تو کچھ نہ یاد ہے، نہ خبر ہے، نہ معلوم ہے. اور جب اس حالت کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا اس آزادی کے ساتھ ہم نے نظام عدل آزاد کیا؟ इस आज़ादी के साथ क्या हमने निज़ाम तालीम आज़ाद किया, इस आज़ादी के साथ क्या हमारा निज़ाम मईशत आज़ाद है, सेहत के निज़ाम, अस्पतालों की तरतीब, तालीम, तालीम के हसूल, कोई एक शय तो हमें मालूम। हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं बयान और उस बयान में से वो क्लिप जो आज़ादी से मुतल्लिक है मैं सुन रहा था, बड़े दर्द से आप फरमा रहे थे कि हमारा अंदाज़े कलाम, लिबास, हुलिये, कोई सूरत ऐसी नहीं है जो ये बताए कि हाँ ये कौम आज़ाद है। तो जब हम आज़ादी के नारे और आज़ादी के दिन मनाएंगे और असूल इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर नतीज क्या आए, कैसी तकालीफ उठाई उन लोगों ने जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को हिजरत की, और क्या हालात उन मजलूमों के जो 1947 से लेकर आज तक उसी कैफियत में जिंदगी बसर कर रहे हैं हमारे कश्मीरी भाई। अब कश्मीर को क्या कहते हैं कि जन्नत नज़ीर, अमूमी हमारे जो आपस की गुफ्तगू के जो फिक्रें हैं, शायद ये कहीं तहरीर में तो हैं कि नहीं, लेकिन ये हमारे पंजाब में ये एक बात आम है कि वतन कश्मीर है, यानी हर एक का जो वतन है उसकी मोहब्बत, उसकी शौक, उसकी खूबसूरती ऐसी है जैसे खूबसूरती कश्मीर की है। तो वहाँ की मिसाल यहाँ देखिए, ओ भाई जन्नत में शैतान का तसव्वुर नहीं है, वहाँ शैतान नहीं है। तो ये जो जन्नत नज़ीर कहा जाता है और वहाँ शयातीन बैठे हैं, ये क्या है? ये हमारी बेअमली के नताइज हैं, हमारी इबादात के सौदे हैं, वो इबादात के सौदे इबादात को इबादात के दर्जे तक नहीं पहुँचने देते। वो असबाब जो हमारे अरूज के थे आज हमारे अंदर नहीं है और उनका न होना हमारे जवाल का सबब है। तो दुनिया में जब आप जालम को देखें ना, वो कहते हैं कि जालम मारता भी है और रोने भी नहीं देता, यानी शिकायत भी नहीं करने देता कि मेरे साथ जुल्म हुआ। फिर एक और बहस आती है कि जी मईशी तौर पर अगर कमजोर हूं तो मुकाबला कैसे हो सकता। जब दीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक को बयान फरमाया बुनियादी तौर पर एक ज़ात आपकी, आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, ख़वातीन में एक ज़ात उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दावत हक इरशाद फरमाई, आमीन उन्होंने की। तो बाहर मर्दों में आपकी ज़ात के बाद हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, हज़रत अली करम वजहुल करीम बच्चों में पहले हैं जो इस्लाम लाए, कितना जाओ जलाल दुनिया का साथ था, कितनी माल और दौलत साथ थी। फिर जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनकी अक्सरियत तो गरीब तरीन थी, कितने ऐसे थे जो ख़ानदानी ग़ुलाम थे, वो जो उन्हें सजा दे रहे थे उनके सजा देने को जवाबन कलाम में भी इनकार नहीं कर सकते थे। वो घर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, वो बैतुल्ला शरीफ जिसके सजदे को, जिसके सजदे की ख्वाहिश और तमन्ना को रब कायनात ने पूरा फरमाया, वो अल्लाह का घर, वो शहर किस लिए छोड़ा? बहुत दौलत थी, बहुत ताकत थी, इसलिए हिजरत की। यहां तक कि वहां रहते हुए शेबे अबी तालब के हालात तमाम मुआशरे ने अलग कर दिया, कोई कलाम नहीं, कोई लेन देन नहीं, और वहां से हिजरत तक और फिर हिजरत से वापस फतेह मक्का तक। तवक्कल अल्लाह है। और ये कह देना कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हस्तियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अफ़ज़लुल ख़ल्क अल्लाह करीम ने बशर को बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। बुलंदी हमारे बयान में नहीं आ सकती जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। बाद अंबिया जो शान ईमान की अल्लाह करीम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अता फरमाई, हमारे पास अल्फाज को नहीं, हमारे पास वो समझ वो पहुँच नहीं कि उस बुलंदी को बयान कर सके। लेकिन कुरान करीम फरमाता है कि अगर दुनिया पर फरिश्ते होते तो फरिश्ते को ही मबूस किया जाता। बहसियत बशर हमारे लिए रहनुमाई का सबब यही बात है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई बशरी तकाजे नहीं थे, भूख प्यास नहीं थी, अफलास नहीं महसूस की गई, गर्मी की हिद्दत महसूस नहीं की गई, सर्दी की जो तकलीफ है वो किसी ने महसूस नहीं की। अगर जख्म आया तो खून नहीं बहा, अगर कोई प्यारा शहीद हुआ है तो आंखें नम नहीं, कोई नहीं कह सकता। बल्कि कुरान करीम तो अरबी जबान तक इरशाद फरमाया था कि ताकि तुम्हें वाज़े समझ आए। तो जिन असूलों जवाबित को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया उन असूलों जवाबत पर बात कोई नहीं करता, दुनिया की बात करते हैं। और जब दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में हम इतने नालायक हैं कि लोग या अकवाम हमसे आगे हैं, हम उनके मरहूने मिन्नत हैं, पीछे भी नहीं मरहूने मिन्नत हैं, उनसे लेकर खाते हैं। फिर हमारे आजादी मनाने के जलूस का किसी पर क्या असर होगा? मुमकिन नहीं है कि कोई बंदे मोमिन हो जिसके सीने में ईमान मोजन हो, जिसे तवक्कल अल्लाह हो, जो आखरत को देखकर जी रहा हो, उसका रास्ता भी कू काटने की जरूरत करे। हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमा रहे थे एक दफा बयान में, अभी मुझे उस शहजादे का नाम याद नहीं लेकिन तातारियों की तारीख में बयान फरमा रहे थे। तो वो शहजादा वस्त एशियाई रियासतों में से किसी रियासत का शहजादा था, हुकूमत गिर गई, मुल्क महकूम हो गया, लेकिन वो अपने जो भी बचे कुचे फौजी थे उनके साथ लड़ता रहा और तातारियों की भी ये कोशिश थी और गलबन हलाकू खान खुद कमान कर रहा था, उसकी कोशिश थी कि शहजादे को कत्ल किया जाए ताकि ये बगावत का सर ही ख़त्म हो जाए, अगर ये जिंदा रहा तो ये फिर बगावत उठेगी। तो लड़ते भिड़ते हजरत जी फरमा रहे थे कि अटक का जो दरिया है यहाँ तक पहुँच गए, और अटक के दरियात में पहुँचने पर उस शहजादे के पास कुछ चारा ना रहा, सिपाही उसके शहीद हो गए, तो उसने दरिया में घोड़ा डाल दिया। और यहाँ से दरिया का पार्ट भी थोड़ा तंग है और बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो यहाँ से दरिया अबूर करना बहुत मुश्किल है अटक के पास। उसने अपना घोड़ा जो है वो दरिया में डाल दिया। अब तातारी पीछे, जब वो दरिया में घोड़ा डाल चुका तातारी भी किनारे पर पहुंच गए, उन्होंने कमानें खींची। उस हलाकू खान ने कहा नहीं, कमानें नीचे कर लो, इस पर अब तीर नहीं बरसाया। क्यों? कहा दूसरी तरफ सुल्तान अल्तुतमिश की सल्तनत, अगर वो इस बात पर उखड़ गया कि मेरी सरहद पर तूने एक फर्द को मारा है तो उसे हम नहीं रोक सकेंगे। वही तातारी थे जो सरों के मीनार बना रहे थे, जिनको खौफ की अलामत समझा जाता था। दरिया सरहद है, दो ममालिक की सरहद थी, मलकियत इधर की ही नहीं थी। जुर्रत नहीं हुई उधर के बंदे पर जिससे लड़ाई हो रही है, जो उनसे भाग रहा है, कि उस पर तीर भी बरसाएं। क्यों? उन्होंने मुल्क तामीर किए थे। किन बुनियादों पर तामीर किए थे? जिन बुनियादों पर रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई, जबानी नहीं। आज जब हम आज़ादी कश्मीर की बात करते हैं तो क्या हम आज़ाद हैं? अब ये वो नुकात हैं कि जितना बयान किया जाए दिल भी दुखता है और शायद बेशुमार जो दोस्त अहबाब हैं उन्हें एतराज़ भी हो, इस बात को एतराज़ी पहलू में देखो। आज़ादी होती है कि अपनी मर्जी से रहना, अपने मर्जी के उसूल इख्तियार करना, मर्जी से पहनना, मर्जी से उड़ना। क्या ये सारा हमारे पास है? हम तो अपनी मर्जी से अपनी ज़बान नहीं बोल सकते। वो उलूम जो हमें दुनिया की ज़रूरत के हैं हमारी ज़बान में, तो वो हमें मुयस्सर नहीं। तो हकीकी आज़ादी के लिए हमें ज़रूरत है इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो इन एतराज़ात और ये जो जवाब हमने ले लिए हैं कि हम क्या करेंगे, इससे निकाल कर तवक्कल अल्लाह की दौलत से माला माल कर देंगे। हम यहाँ रहें, एक एक लम्हा अल्लाह के हुक्म पर बसर करें तो कुर्बे लाइक का सबब। यहाँ ना रहे और उसके नाम पर जा निसार हो गए तो और शुक्राने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर बंदे मोमन को ये दर्जा नसीब फरमाए कि उसके नाम पर कुर्बान हो सके। तो जब इन हकायक को हम देखेंगे तो बजाय बहम एतराजात के इसके तदारक की जरूरत है। और जब तकलीफ आती है तो हम भी बड़ी लंबे लंबे सजदे शुरू करते हैं, तस्बीहात लंबी लंबी पढ़ना शुरू कर दें, बाजमात नमाज के तमाम तक जाना शुरू कर दें, और जब तकलीफ ना रहे तो ये सारा कुछ भूल जाए। तो ये तो वो भी कर रहे हैं जो मुनकर थे, तो वो भी कर रहे हैं जो शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे। तो तकलीफ की सूरत में जो दूसरा पहलू यहाँ हमें बयान फरमाया गया दुआ की सूरत, वो ये है कि आजी हो और ऐसी हम कलामी जो अल्लाह और बंदे के माबैन। दूसरा कि ये बुनियाद कि सौदा किया जाए ये शुक्रगुजारी तक नहीं पहुंचाती। इस हाल को देखते हुए आए अपने इस वतन अजीज पर जो 6 फुट का मेरे पास है, जो 6-5 फुट के आपके पास है, यानी ये जो हमारा वजूद है, आए इस पर ये असूल जो हैं नाफिज करें और गैर मशरूत नाफिज करें, सौदों पर नहीं। तो फिर क्या नसीब होगा वो जो जिसका कह रहे हैं लनकूनन्ना मिन शाकिरीन, तो हम जरूर आपके शुक्रगुजार होंगे। जब सौदे पर नहीं होगा तो शुक्रगुजार की कैफियत नसीब होगी। जिंदा रहे तो भी आबरू मंदाना जिंदगी होगी, मौत आई तो भी आबरू मंदाना मौत होगी। मौत से भागना नहीं होगा, मौत को याद ऐसा करना होगा कि जब आए तो उस वक़्त फिर घबराहट नहीं होगी, इंतज़ार होगा। अल्लाह करीम हमें ये ईमान की सूरत अता फरमाएं कि हमारी सीरत के एक एक रेशे तक ये जज़्ब हो। और यही एक हल है बंदे मोमिन के मसाइल का, दुनिया का कोई वक़्त कोई ज़माना हो, यही हल है। गौर कीजिएगा कुरान करीम अक्वाम साबका के जो अल्फाज बयान फरमाता है इनकार के और इकरार के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में इरशाद फरमाया गया, जो अहदीस मुबारक आने वाले वक्त से हमें मुतला करती हैं, और जो कुछ आज हम सुनते देखते हैं, देखिएगा जो इनकार और ज्यादती करते हैं एक जैसे अल्फाज हैं उनके, जो इकरार की तरफ जाते हैं उनके एक जैसे अंदाज हैं। अल्लाह करीम दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये वतन अजीज बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें नसीब हुआ है, इसके अंदर तकसीम दर तकसीम हमारे किरदार ने किया। और एक चीज और अर्ज करूं कि कहीं किसी का कोई दुश्मन पैदा होता है, दुश्मनी का सबब बनता है तो दुश्मनी होती है, इस वतन अजीज के जो दुश्मन हैं इसके वजूद में आने से पहले मौजूद हैं। ये सारा यही नहीं है कि सारी हमारी बेअमली के नताजे हम खराबी कर रहे हैं, हमारी बेअमली और खराबी हमें अंधा कर रही है। अपनी किरदार की खराबी तो है ही है, जो लोग बाहर बैठे इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम उनके भी आलाकार बनते चले जा रहे हैं। और क्या मजबूती क्या होती है, वो यकजहती से आती है। अगर आप गौर करें, हमें कौमों में तकसीम कर दिया गया है, इलाकों में तकसीम कर दिया गया है, और दावे ईमान के साथ हमें फिरकों में इस दर्जे पर तकसीम कर दिया गया है कि बाहम दस्तो गिरेबां हो गए हैं। तो जरूरत है इत्तफाक की। अब इत्तफाक का हासिल करने की क्या सूरत होगी, जब हम अपना फर्ज की अदायगी को देखेंगे जिसकी तालीम इस्लाम देता है। अब इस इत्तफाक और इत्तेहाद में और मजीद क्या जरूरत आएगी कि ये मुल्क मेरा है। इस मुल्क के इदारे चाहे वो किसी सूरत में है, आर्मी की सूरत में है, अदलिया की सूरत में, पार्लियामेंट की सूरत में, वो क्या है, वो मेरे हैं। ये आवाम मेरी है, ये लोग मेरे हैं। ये दावा हम में से हर पाकिस्तानी का हो। अब जब सब कुछ मेरा है तो जो मेरे जिम्मे है अपने इन प्यारों की अदायगी के लिए, बेहतरी के लिए, जो मेरा जिम्मा है वो कोई और आकर अदा करेगा। ये तो वो हालात हैं जो दुनिया के हमारे सामने, हमारी कमजोरियां, हमारी खताएं अल्लाह में माफ फरमाए। लेकिन दुनिया में सारा कुछ ऐसे ही नहीं है जिसे हम देख रहे हैं कि रात है और सुबह है। बेशक एक निज़ाम है, हकीकी निज़ाम जो है वो फिर तकवीनी अमूर में से आता है, जो मिन जाने बिल्ला फैसले है। मिन जाने बिल्ला फैसलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि ग़ज़वत अल हिंद होगा, और ग़ज़वत अल हिंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनफ़्स नफीस इस दर्जे की शिरकत तवज्जो की नसीब होगी कि आपने से गजवा इरशाद फरमाया और फरमाया इसमें जो मुजाहिद शरीक होंगे, शुहदा या गाजी शिरकत फरमाई, क्यामत के दिन ऐसी खुशबख्त वो होंगे कि उनका हिसाब नहीं होगा, उनसे हिसाब नहीं लिया जाए। हमारे अजदाद को करुण करून से उनके मदफन इस खित्ते में मिलते हैं, किस लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे का इरशाद फरमाया, तब से लोग चल रहे हैं। इस अलाव को और आग दो और हिद्दत पैदा करो, हमें घबराहट नहीं है, हमारे तो अजदाद इस तरफ दफन होते आए हैं इसी इंतज़ार में, हमें भी इंतज़ार है कि अल्लाह हमें गज़वत अल हिंद का मुजाहिद बनाए, इसमें हमारी जानें जाएं, हमारी गर्दनें उड़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म तो मेरी कौम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत बयान फरमाई। अपने इस रिश्ते को जानो। तो अगर 22 करोड़ हम हैं तो 22वां करोड़वां ये पाकिस्तान मेरे पास भी तो है, इसकी तामीर में मेरे पास कितना किरदार, मैंने कितना किरदार अदा किया है। नहीं तो फरमाया कि अगर मुसीबत से निजात दे दें अल्लाह तो हम जरूर आपके शुक्र गुजार होंगे, नहीं तो मोहतरम सौदे पर यह सूरत नसीब नहीं होगी। फरमाया कुलिल्लाजीकुम मिनहा वमिन कुल करबिन सुम्मान तुम तुशरिकून। फरमा दीजिए कि अल्लाह तुमको इससे निजात देते हैं और हर सख्ती से फिर तुम शिर्क करने लगते हो। यहां जो हिस्सा तालीम फरमाया जा रहा है कि हर अमल उसके हुक्म से है, अब जब तुम उसके हजूर गिड़गिड़ाते हो और वो तेरी मुसीबत दूर कर दे, और तू गिड़गिड़ाते शुक्राने के सौदे कर रहा हो, मुसीबत दूर आए तो फिर तू भूल जाए, तो फरमाया कि फरमा दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तुमको इससे निजात देते हैं और हर सख्ती से, फिर तुम शिर्क करने लगते हो। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें कलमा गो पैदा फरमाया, कसीर तादाद हमारी बतौर तवारस मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब शिर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले ले आना। बुनियादी इनकार कुफ्र, ईमान के होते हुए अपनी मनसूब जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो जरूरियात हैं, उनको किसी से मनसूब करते जाना। किस किस दर्जे की मनसूब कर रहे हो, उस दर्जे की कोई ना कोई हिस्सा शिर्क का बनता चला जाता है। राज़िक अल्लाह है, क्या हमारा ये ईमान हमें कारोबार में भी नजर आता है, लेन देन में भी नजर आता है? तो हर मामला जो जिंदगी का है उसकी रहनुमाई कुरान हदीस में हमारे पास फिका में मौजूद है, जिंदगी भी मौजूद है, लम्हात जारी हैं, चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और तकालीफ के साथ मानना उसकी सूरत भी बयान फरमाई और उसका नताइज भी जो है वो फरमाया। सुम्मा फिर अन तुम तुशरिकून, तुम शिर्क करने लगते हो कि बंदा सौदेबाजी में फिर शुक्रगुजारी की कैफियत में नहीं जाता। अल्लाह करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए, ये जिंदगी शुक्रगुजारी की सूरत में हकीकत के साथ अदा करने की और इसे गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारे मुल्क का हामी व नासिर, हमें बामल मुसलमान बनाए। हमारे कश्मीरी भाई जो जुल्म व सितम सह रहे हैं, अल्लाह करीम उन्हें सब्र और हौसला दे, ताकत दे, इन जालमों को अल्लाह करीम अपने अंजाम तक पहुँचाए। दुनिया भर के जो हम मुसलमान हैं, अल्लाह करीम हमें जो रिश्ता एक उम्मती का दिया है इसकी हकीकत को समझने की तौफीक नसीब हो। आए इस इंतज़ार में कि कोई क्या करे न बैठें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें, इसलिए कि मेरा अल्लाह राजी हो, इसलिए कि ये तालीम फरमाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि इसके नताइज को रोज़े माशर मैंने आपने हम सब ने देखना है। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله 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 الله